وَمِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی چیز ہمارے پاس مگر اس کے خزانے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اور نہیں ہے کوئی شے مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے. یہ خزانے کو آپ کیسے سمجھیں؟ خزائن جو نا اصل میں خزانہ سے ہے، اور خزانہ کہتے ہیں کسی چیز کو جمع کرنا پھر حفاظت کرنا. یہ عربی کا لفظ اب ظاہر اردو میں لگتا ہے. ہمارے پاس اس کے خزانے، اس کو آپ کیسے سمجھیں؟ جیسے اسٹوریج. دیکھیے دنیا میں دو طرح کی دکانیں ہوتی ہیں نا، ایک وہ ہوتے ہیں جہاں میں اور آپ جا کے خرید آتے ہیں، تھوڑا تھوڑا رکھا ہوتا ہے، سارا دن فل اپ کرتے رہتے ہیں. کچھ جگہ ہوتی ہیں جس کو آپ کیا کہتے ہیں، ان کے اسٹوریجز ہیں بہت، جیسے وہ بڑے بڑے کیا بولتے ہیں، خاص ایک جگہ بھی ہوتی ہے شیلر سے ہوتے ہیں، ویئر ہاؤس. جی جزاک اللہ. ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں نا جہاں چیزیں بنتی ہیں، اگر فصل ہے تو وہ کہاں انہوں نے شیلر اور جس طرح کے وہ تھریشر رکھے ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اصل خزانے ہم نے رکھے ہوئے. ہاں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے مگر ایک طے شدہ اندازے کے مطابق. آپ سوچئے اگر اللہ سارا کچھ ہمارے حصے کا میں شروع میں دے دیتا. یہ جو لفظ ہے نا، اس کو آپ لکھ لیں خزائنہ کو گودام، اردو میں لفظ گودام تو سب کو ہی آتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا رزق دینا تھا نا، سارا میرا لکھ دیا ہوا ہے. اب میرے پاس تو آج اتنا ہے جو مجھے پتہ ہے میں نے دو چار دن میں کھا لینا، باقی کدھر ہے؟ اندنا، ہم میں سے ہر ایک کے رزق کا اصل اسٹوریج اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے. ڈیلی بیسس پہ وہ میاں جی جا کے شاپنگ کر لیں، وہ بیٹا کر لے، وہ بھائی کر لے، وہ باپ کر لے، وہ شاپنگ کر کے ہمارے فریج میں، ہمارے کچن میں آ رہا ہے، کیونکہ ہم سارا رکھ نہیں سکتے. آپ سوچیں بچہ پیدا اور ساتھ ہی ایک لائن لگ جائے اناج کی جو اس نے ساری زندگی میں کھانا ہے، کہاں رکھیں گے؟ گھن لگ جائے گا، سنبھالیں گے کہاں؟ ذرا فالتو چیز آ جائے تو گھر میں فکر لگ جاتی ہے کہ یہ مس یوز نہ ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں لا محدود خزانے میرے ہیں، تمہیں تو صرف ضرورت کی چیزیں دیتے ہیں، اگر سب تمہیں سنبھالنا پڑتا تو پھر تو پتہ نہیں تم نمازیں بھی نہ پڑھتے. ابھی تو ڈے ٹو ڈے خرچہ ہم اپنے گھروں کو بھی گودام بنا لیتے ہیں. بعض دفعہ چیز ہے ملتی کوئی نہیں، اتنی کثرت سے. تو جس رب نے اتنا کچھ بنایا، کیا وہ ہمیں بھوکا سلائے گا؟ پہلے کس کی بات ہوئی؟ آسمانوں کی، پھر بات ہوئی زمین کی اور رزق کی، اب بات ہو رہی ہے ہواؤں کی. یہ پیغمبر ہیں. دیکھیے ایک وہ پیغمبر ہوتا ہے جو نبی اور رسول کی صورت میں آتا ہے، جو زبان حال سے اور زبان قال سے بولتا ہے. یہ وہ پیغمبر ہیں، پیغمبر سمجھیں میسنجرز ہیں، جو ہمیں اللہ کے وجود کا ثبوت دیتے ہیں. چلتی ہوئی ہواؤں سے پوچھو اللہ کون ہے. I-22 اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو جو بوجھل ہوتی ہیں، یا بوجھل ہوتی ہیں یا بوجھل کرنے والی ہوتی ہیں. یہ جو لفظ ہے نا لا واقع، لقح سے ہے، لام قاف ہا اس کا روٹ ہے، لاقح کی جمع. لاقح کہتے ہیں بار آور، بوجھ اٹھائے ہوئے، کوئی چیز جو کسی کو فرٹائل کرنے کا ذریعہ بنے. سمجھیں، ایک ہوتی ہے پریگننٹ عورت، اس نے تو بچے کا بوجھ اٹھایا ہوتا ہے نا. ایک وہ چیز ہے جو کسی کو پریگننٹ کرتی ہے، یہ مراد ہے ادھر. یعنی ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، بارش لاتی ہیں، اور یہ کون سے بلا لواقع، جس نے سائنس پڑھی وہ ایک لفظ میں بول دے گا، پولن گرینز. یہ ان کا ذکر ہے، کیسے ہواؤں کے چھوٹے چھوٹے پولنز ہیں جو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوتے ہیں. آپ کو پتا کہ پودوں میں بھی میل اینڈ فیمیل ہوتے ہیں، فیمیل کے پولنز میل پہ جاتے ہیں، اس طرح چینجز ہوتی ہیں. یعنی میل کے فیمیل پہ آتے ہیں اور ہوائیں اٹھا اٹھا کے، اور مکھیاں اور تتلیاں اور شہد کی مکھیاں سارا دن یہ کام کر رہی ہیں، اس کے ادھر لاتی ہیں، جو ہی لاتی ہیں وہ پودا فرٹائل ہوتا ہے اور اس میں سے پھر پھول نکلتے ہیں. کبھی مجھے اور آپ کو سوچنا بھی پڑا یہ کیسے ہو رہا ہے. یہ وہ ذات جس کا قرآن میں اور آپ پڑھتے ہیں، فانزلنا من السماء ماء فاسقیناکم، پھر ہم نے اتارا آسمان سے پانی پھر وہ تم لوگوں کو پلایا. تم تو فریج کھولتے ہو جھٹ سے پانی پیتے ہو. پانی جو زندگی کا ذریعہ ہے، حیات کا وجود دینے والا، اس کا سر چشمہ کہاں سے آتا ہے؟ ایک خوبصورت نظام ہے، اس کو آپ آج کے دور میں واٹر سائیکل کہتے ہیں. کیسے سمندروں سے ہواؤں تک بہارات کو پہنچانا، پھر بارش سے برف باری، پھر گلیشیئرز کی شکل میں بلند و بالا پہاڑ، پانی کا اس میں نظام، پھر چشموں، ندی نالوں اور دریاؤں کے ذریعے پانی کو میدانی علاقوں میں لے جانا، پھر زیر زمین پانی کا عظیم و شان ذخیرہ، یہ سب کچھ کر کے اللہ کہتا ہے وما انتم لہو بحاضرین، تم اس کے جمع کرنے والے نہیں ہو، یہ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم اس پانی کے ذخیرے کو جمع کرتے. کیا پتہ چلا، ہم کہتی ہیں خواتین، اکثر عادت ہوتی ہے ہماری کہ مجھے تو 101 کام ہے، آپ بس مزے سے بیٹھے رہتے ہیں، بس آپ کو تو ایک کمانے کا کام ہے، کہتے ہیں آپ لے اپنے مردوں سے جی، یہ سارے کام بھی اگر مجھے اور آپ کو کرنے پڑتے، روز جا کے ہواؤں کا بٹن دبانا، بادلوں کا، زمین کا، سورج کا، چاند کا، پولن گرینز کا، تتلیوں کا، مچھلیوں کا، تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے سر پہ پٹیاں بندھی ہوتی ہیں ہر وقت سر درد کی وجہ سے، اتنے ہم کہتے ہیں ہمیں کام ہے، اور کتنے کام میرا رب کر رہا ہے، اور اگر اللہ یہ کام روک لے نا تو ہم کچھ بھی نہ کریں، اتنے کام کرتے ہوئے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ دنیا نہ ختم ہونے والی ہے، لیکن ایسے مجھے لگا جیسے کوئی کسی کو جھنجھوڑ کے کہتا ہے اسی پہ نہ رہنا، یہ بھی ختم ہو جانا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور یقیناً ہم ہی ہیں جو زندہ بھی رکھتے ہیں. دیکھیے کتے کسی کو زندہ کرنا یہ وہ نہیں ہے، معنی کا فرق نوٹ کریے گا، ہم ہی ہیں جو زندہ بھی رکھتے ہیں، ونمیت، اور ہم موت بھی وارد کرتے ہیں، اور بالآخر ونحن الوارثون، اور ہم ہی وارث ہوں گے. تم اس دنیا کے جو ہم کھاتے ہو، بچوں کا کیا بنے گا، ان کے لیے کیا چھوڑوں گی، ان کا مستقبل کیا ہوگا، بیٹیوں کے رشتے کیا ہوں گے، سب کچھ کر لو، اگر اللہ نہ چاہے تو خیر نہیں ملے گی، ہر چیز جائے گی. یہ نحن الوارثون کہہ کر اللہ نے بتا دیا، تم اپنے وارثوں کے لیے جمع کرتے کرتے اپنی آخرت نہ ختم کر دو. دیکھیے اکثر ماں باپ کی فکر کہتی کچھ اور بچوں کے لیے چھوڑ دیں، کچھ اور محنت کر لیں، چلو بعد میں ان کے کام آئے، ان کے لیے کچھ کرتے کرتے اپنی آخرت بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بچوں کی دنیا بناتے بناتے ان کی آخرت نہ بھول جاؤ. تم یہ سوچتے ہو کہ میں مر گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ سوچو کہ میرے بچے مر جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا، اور جو تم ان کے لیے چھوڑ رہے ہو لاکرز میں اور بینکوں میں اور گھروں کی صورت میں، ان کے پاس کہاں رہنا ہے. الوارث تو ہم ہیں، نحن الوارثون، بالآخر سب کو جانا ہے. دیکھیے بڑا اداس کرنے والا جملہ ہے، صرف اس میں ہماری موت کی نہیں، ہمارے بچوں کی موت کی بھی خبر ہے، اور ان کے بچوں کی موت کی بھی خبریں ہیں، جن کے نام پہ تم جائیدادیں چھوڑ کے جا رہے ہو انہوں نے بھی کل چھوڑ کے چلے جانا ہے. اس پہ اگر آپ اللہ کا نام الوارث سن لیں، تھوڑا سا ہی اس کی میرا نہیں خیال بہت لمبا ہوگا، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس لفظ کا حق ادا کر پائیں گے. کیسے اللہ یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے، یہ سارے اسباب معیشت ہیں، یہ اتنی چیزیں مل رہی ہیں نا تو پھر اس دنیا کا کام ہو رہا ہے. اور سورت مریم آیت 40 میں بھی ہم یہی بات پڑھیں گے کہ ان نحن نرث الارض ومن علیھا وانا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور جو کچھ اس پہ اور ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہ چیز دنیا میں انسان کی رہی سہی خواہش ختم کر دیتی ہے. میں کسی کی بات سن رہی تھی، جمال الدین افغانی ایک استاد تھے مکہ کے، یعنی کسی نے ان کی بات سنائی کہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر تھے، اتنے اپنے مشن سے پیار کرنے والے تھے، اپنی کلاس میں پڑھا رہے تھے کہ ایک دم پیٹ میں شدید درد اٹھا. تو جب شدید درد اٹھا تو فوراً ان کو وہاں سے اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے. خیر وہاں جا کے انہوں نے کچھ علاج کیے اور کچھ ٹیسٹ دیے، فارغ کیا ہاسپٹل سے، اگلے دن پھر کلاس میں آ گئے. 8 دن کے بعد ان کو رپورٹ ملنی تھی، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ہاسپٹل سے میری رپورٹ تم لے کے آؤ، میں پڑھا رہا ہوں تمہیں. جب وہ اسٹوڈنٹس گئے، رپورٹ ٹھیک نہیں تھی، بہت روئے دھوئے واپس آئے، کہنے لگے تم میری رپورٹ لے کر آ گئے ہو. اسٹوڈنٹس رونا شروع ہو گئے، ایک رویا، دوسرا رویا، تیسرا رویا، کہتے کہ قصہ مقصد یہ کہ آپ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ آپ کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے. تو رونے لگے نا، تو پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ تم کیوں روتے ہو، جب اللہ میری ملاقات کا انتظار کر رہا ہے تو میں اس کی ملاقات کا انتظار کیوں نہ کروں. اگر اللہ میری ملاقات، مجھ سے ملنا، اس سے پیار کرتا ہے تو میں کیوں نہ کروں، اور آخری دن تک اپنے کام پہ رہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت میں شخصیات بنائی ہیں، आज हम कोई एक ऐसी शख्सियत बना पाएं तो यकीन करें वो हज़ारों पे भारी है, कि जिनको हर हाल में काम प्यारा है, जिनकी जिंदगी मौत खुशी गम इस काम के साथ है कि हमने अल्लाह का दीन पीछे नहीं करना। यकीन करें ये वो लोग होते हैं जिसको इस बात का यकीन है कि अल्लाह वारिस है। हम अपने कामों में इतना पड़ जाते हैं वल्लाही, कैसे लगता है कि हम अपने नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। अगर वाकई हम नहीं करेंगे तो हमारे कोई नहीं करेगा, अगर हम अल्लाह पे नहीं डालते, कहते जाओ करो फिर। और हम जो करते हैं वो हमें पता है, एक करते हैं एक बिगड़ते हैं। अब एक मुश्किल से हमारी जान नहीं छुटती, दूसरी हमारे सामने होती। कैसा नहीं होता सबके साथ? ऐसे लगता है कि बस ये मसला हल हो गया ना तो सुकून आ जाएगा ज़िंदगी में। कोई भी नहीं आता। सुकून एक ही दिन आएगा जब अल वारिस के हाथों में अपना सब कुछ दे देंगे। वलक़द अलिमना अल-मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमना अल-मुस्ताख़िरीन। अब ये मेरी और आपकी बातें हैं। अल्लाह कहते हैं हम खूब जानते हैं तुम में से आगे बढ़ने वालों को भी और पीछे रहने वालों को भी। तुम्हें तो ख़ुद नहीं पता कि तुम में से कौन कहाँ अटक जाएगा, हमें पता है। और याद रखिए कि ये आयतें जो हैं ये नबूवत के बिल्कुल इब्तदाई दौर की हैं। अल्लाह अपने नबी के साथियों को कह रहा है तुम्हें आज खुद नहीं पता, बल्कि नबी को भी कहा जा रहा है आपको नहीं पता कौन आपकी पुकार पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहेंगे और इस दावत को इस किताब को सीने से लगाएंगे। और कौन नहीं लगाएंगे आपको तो नहीं पता। السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان سورة توبہ آیت 100 میں یہ تین گروہ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس کی خبر دے رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کون سابقون الأولون ہوں گے، کون مہاجر بنیں گے، کل ابھی تو ہجرت بڑی دور تھی، کون انصار بنیں گے اور کون تابعین بنیں گے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرتے ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر جیسے لوگ حق کو قبول کرنے میں ایک لمحے کی دیر نہیں لگائیں گے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ عثمان جیسے لوگ جو فوراً اپنی دولت کے منہ کھول دیں گے جب موقع پڑے گا، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ابو بکر کی تبلیغ سے طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید جیسے لوگ فوراً ایمان لے آئیں گے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کون بدبخت ہیں جو اس عادت سے محروم رہ جائیں گے۔ ہاں لیکن وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمَ اور بے شک آپ کا رب بھی ہے جو ان کو اکٹھا کرے گا۔ اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وہ خوب حکمت رکھنے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ کیا پتا دنیا میں نہیں بھی پتہ چلے گا، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون آگے بڑھے گا اور کون پیچھے رہے گا۔ اب اس ایک آیت کی کتنے مختلف رنگ ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ چھ سے زیادہ اس کی تفسیریں ہیں۔ نمبر ایک، مستقدمین کون ہیں؟ جو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور مستاخرین جو نیکیوں میں پیچھے رہنے والے۔ دعا کیجیے اللہم لا تجعلنا منہم۔ اسی طرح میں لفظ بار بار نہیں بولتی، بس سارے ڈفرینٹ اینگل بول دیتی ہوں۔ پہلے سے مراد وہ لوگ جو گزر گئے ہیں، یعنی جو زندگی کے پہلے دور میں گزر چکے، اور مستاخرین جو بعد میں آنے والے ہیں۔ اسی طرح مستقدمین سے مراد امت محمدیہ میں سے پہلی امت، یعنی شروع کے دور کے لوگ جو اللہ کے نبی کے قریب کے دور کے لوگ تھے، اور مستاخرین سے مراد آپ کی امت کے آخری دور کے لوگ، جیسے آج ہم اور آپ ہیں۔ پھر مستقدمین سے مراد وہ لوگ جو نیکیوں میں آگے بڑھ گئے اور جنت میں سب سے پہلے پہنچ گئے، اور مستاخرین جو جنت میں جانے سے پیچھے رہ گئے۔ اسی طرح مستقدمین سے مراد وہ جو نماز میں سب سے پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور لوگ ان کو بھی مجنون اور دیوانہ ہی کہتے تھے، اور آخرین پچھلی صفوں میں آخری رکعت پہ جمعے کی نماز میں جا کے دو ٹھونگے مار کے کہتے ہیں پڑھا یہاں جمعہ۔ پتہ چلا جمعہ کوئی نہیں پڑھا تم نے، وہ تو ختم ہو گیا تھا خطبے کے شروع ہوتے، اب چار کی بجائے بلکہ تو نے دو رکعت پڑھ کے آ گیا ظہر کے۔ اسی طرح مستقدمین سے مراد اسلام قبول کرنے میں جلدی کرنے والے، اور آخرین جو دیر کرنے والے ہیں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں، میں کس میں ہوں؟ مستقدمین میں کہ مستاخرین؟ کوئی حکم ملے देखिए हुक्म वो नहीं होता कि कोई जाके अल्लाह के रास्ते में घर ही ढा के आ जाओ, लेकिन कोई छोटे से छोटी बात, कोई रूल, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई अच्छा काम करने का मौका, कोई वॉलंटियरली करने वाली चीज़, कोई बात है, मैं उसको मानने में मुस्तकदमीन में हूँ कि मुस्ताखरीन में हूँ, ये मैं और आप ख़ुद से पूछेंगे। अब ये 15 पारों के बाद मैंने आपसे कुछ नहीं पूछना, रमज़ान के बाद देखिएगा जो कुरान चलेगा ना, ये आप ख़ुद अपने आप से पूछेंगे, मैंने सिर्फ मैसेज कन्वे करना है आपको रब का। आपका दिल चौकीदार बन चुका होगा इंशाल्लाह तआला कुरान के बाद, आप अपने अंदर ये कितनी बड़ी तब्दीली देखेंगे सूरह कुरान के बाद। अभी आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं उसको सोच के भी इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि आपका वो गिरोह है कि जिसको बिल्कुल बीच में आधे रास्ते में ला के अल्लाह ने अब आधा सुना और आधा ना सुना सुनवाना है। अगर आपने कुछ लेना है तो इस साल के दौरे कुरान से ले लें, फिर आप देखेंगे कि आप के अंदर क्या फुरकान आता है। इसलिए कि इंसान अपने आप को बहुत सोचे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। अगर मेरा और आपका अमल दूसरों से फ़र्क नहीं होता तो मुझे बताइए कि फिर हमारे इधर आके चार चार पाँच पाँच घंटे बैठने का फ़ायदा? इतनों को मुश्किल में डाला हुआ है, इतनों की नज़रों में आए हुए हैं लोग, पता नहीं हमें क्या समझने लग गए। और अगर हमारे दिल वही हैं गंदे, हमारे अमल वही हैं, अगर हमारी नेकियों में सुस्ती, नमाजों में सुस्ती, तो फिर आप बता सकते हैं कि बाकी क्या होगा? तो ये तो मैं और आप ख़ुद बात करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे।
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ।
अब देखिए कि हमने आयत नंबर 19 से 21 तक बहुत सारी ऐसी बातें पीछे देखी हैं कि जिससे हमें ये समझ आता है कि ये दुनिया सिर्फ एक हादसे का नतीजा नहीं है, एक सिर्फ बेकार पैदा हो जाने वाली और जिसको आप इंग्लिश में कह दें कि को इंसिडेंसिस नहीं है, जिसको के डार्विन ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। अगली आयतों में भी कुछ उस पर बात होगी, लेकिन चंद चीज़ें आपको ऐड करवाना चाहूँगी जो मैंने सिर्फ ऐसी बातों में आपको बता दी थी, लेकिन अब कुछ मेरे सामने फिगर्स रखे हुए हैं। पहली बात आप देखिए कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने कैसे इकोसिस्टम रखा है, फूड साइकिल है। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया को किस तरह से बनाया है। हमने यहाँ लफ्ज़ बुरूज पढ़े, बुर्ज की जमा है, किले को भी कहते हैं, कसर को भी कहते हैं और मज़बूत इमारत को भी कहते हैं। लेकिन अगर आप इस बुर्ज को आसमान की वो 12 मंजिलें जिसको अमूमन लोग 12 सैयारों के नाम से जानते हैं उससे रिलेट करके देखें, तो ये पता चलता है कि जिस तरह इस ज़मीन में अल्लाह ताला ने चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से सजाया हुआ है, इसी तरह आसमानों पे भी कुछ इसी किस्म की चीज़ें। कहते हैं कि दुनिया जो है, अल्लाह ताला ने ये जो ग्लोब हमें दिखता है ये घूमता है ना, ये भी आपको पता है एक्सल के गिर्द घूमता है। अब अमूमन क्या होता है कि कोई चीज़ जिसको आप अपने जहन में लाएं, गाड़ी का टायर, अपने एक्सल के ऊपर टायर यूँ घूमता है ना सीधा। कभी कभी आपने देखा कि मर्दों की ज़ुबान से ये बात मेरे कानों में आती है, बचपन से सुनी, कि गाड़ी की अलाइनमेंट रॉन्ग है। वो होता क्या कि एक्सल के गिर सीधा घूमने की बजाय पहिया 19 से 20 हो जाता है। हमारी इस दुनिया जिसको अल्लाह सुभान व तआला ने एक एक्सल पे रखा है, ये इसके ऊपर बिल्कुल सीधी नहीं घूम रही। आप इसको अपनी समझ से इतना कह लीजिए कि अगर दुनिया अपने एक्सिस पे 25 डिग्री के एंगल से घूमे तो ये बिल्कुल सीधी होती, लेकिन ये 25 की बजाय 23.5 डिग्री के थोड़े से इंक्लाइनेशन पे। पहले तो इससे आजिज़ी समझ आती है, बिल्कुल इमेजिनेशन में लाइए कि जैसे किसी इंसान की रुकू की हालत है ना, इस ग्लोब में इस दुनिया के घूमने की कैफियत यूँ है। वाह, इसकी वजह, इस सिर्फ हल्के से बैलेंस की वजह से आज दुनिया में हर चीज़ अपने वक्त पे, अपने मौसम वक्तों पे हर चीज़ हो रही है। कहते हैं कि अगर ये ज़मीन बिल्कुल सीधी होती यानी गोल अपने एक्सेस पे इस तरह घूमती तो जितनी पोल्स पे बर्फ है जो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो गया, पूरी दुनिया के अंदर पानी का इंतज़ाम जो कर रही है, ये दुनिया बनने के चंद सौ साल के बाद ही पिघल चुकी होती और आज दुनिया में पानी का नाम भी ना होता। और अगर ये 23.5 डिग्री की बजाय 22 होती, डेढ़ डिग्री का फर्क है, और आपको पता है डिग्री कितनी छोटी होती है, यानी अगर 22 डिग्री पे ये घूमती तो पोल्स पे जितनी बर्फ़ है उसका जो जितनी बर्फ़ है वो सारी बर्फ़ यूरोप के अंदर पिघलती और यूरोप के खत्ते में ज़िंदगी मुमकिन न रहती। ये जुमला बस इसलिए सोचें कि हम सब यूरोप में बैठे हैं। मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे लगा कि वाकई हमने कभी इसको सोचा भी नहीं है, पूरी दुनिया में ज़िंदगी नामुमकिन हो जाती। फिर इस दुनिया में जो ज़मीन रोटेट करती है इसकी वजह से हवाएं चलती हैं, जो हमने पीछे पढ़ा के लवाके और हवाएं क्यों चलती हैं, क्योंकि ज़मीन भी घूम रही है। पंचक्की का तसव्वुर लाइए ज़हन में, पंचक्की घूमती है ना तो हवा हिलती है और उससे फिर बिजली पैदा होती है, समंदरों के किनारे ऐसी चीज़ें लगी होती हैं। अगर ये ज़मीन घूमने की बजाय साइलेंट होती तो जितने बादल समंदरों के ऊपर बनते वो समंदरों के ऊपर वापस बरस जाते और पूरी दुनिया में फ्लडिंग हो जाती। ये जो खुश्की के ऊपर बादल बरसते हैं ना, ये इन हवाओं की वजह से बरसते हैं, जिसको अल्लाह लवाक़े कहते हैं कि कहाँ ये कहीं पोलन्स को एक से जगह से दूसरी जगह कर रही हैं, कहीं दूसरी तरफ लेके जा रही हैं। आप देखिए कि जितनी साइंस की तरक्की बढ़ती जा रही है ना, उतना अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर बढ़ते जा रहे हैं। रात मेरा ये हाल था, मेरा फेवरेट है कि जिसको आप कहें कि इट्स माय हैबिट, कि मैं जब बिल्कुल रात को अंधेरे में अकेली, यानी घर में सब सो ही चुके हों तकरीबन, उस वक्त कोई आप ऐसे यूनिवर्स की वीडियो देखें और जब आप उसको उस वक्त देखते हैं अपनी पूरी स्क्रीन पे और वो आपको हकीकतें समझ आती हैं। मैं कई चीज़ें मैंने आपके लिए सेव की, लेकिन मैंने सोचा कि आप नहीं मज़ा ले सकेंगे क्योंकि आपके साथ इतने लोग यहाँ बैठे होंगे। हम जितना भी अंधेरा कर लेंगे हम उतना अंधेरा नहीं कर सकते जो रात की तन्हाई में अपने ऊपर होता है। ऐसे लगता है कि वो कायनात भी घूम रही है और आपका दिल भी डूब रहा है। इस तरह की इस कायनात में अल्लाह ताला की प्रोग्रामिंग है, आप सोच नहीं सकते। एक और मिसाल नोट कीजिए कि कायनात में आपको पता है कि जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं, अब ये मैं और आप तो नहीं है ना, ज़िंदा चीज़ों में अगर आप देखें कि जो लाइवली चीज़ें उसमें सबसे छोटी चीज़ जिसको कंसिडर करते हैं वो अमीबा है, यूनिसेलुलर, यानी सिर्फ एक सेल से उसका जिस्म बना है, और हमारा जिस्म खरबों खरबों सेलों से बना है। इसी से आप अपने और अमीबा के फ़र्क को नोट कर लीजिए। उन सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कहते हैं कि फ़िज़ा में 20% ऑक्सीजन रहनी चाहिए। अब आप सोचिए ज़रा, 20% ऑक्सीजन हमारे इर्द गिर्द जो बाकी गैसेज हैं उनमें 20% हो, अगर इससे ज़्यादा हो तो सिर्फ एक माचिस की तीली के जलते ही पूरी दुनिया में आग के अंगारे शुरू हो जाए, और अगर 20% से कम हो तो लोगों को सांस लेने में दुश्वारी हो। जिस तरह आपने देखा है कि जो लोग सिलेंडरों पे जी रहे होते हैं तो कभी गैस कम हो जाए तो उनका सांस उखड़ने लगता है। अल्लाह ताला ने इस सारे सिलसिले को कैसे मेंटेन किया? दरख्तों के ज़रिए। दरख्तों को साइंस की ज़ुबान में लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, कि ये ज़मीन के फेफड़े हैं। होता क्या है कि ऑक्सीजन जितनी जिस्म को चाहिए ज़मीन के अंदर उतनी रहती है, और बाकी जो है वो मुख्तलिफ तरह से दूसरी चीज़ों में यूज़ कर दी जाती है। जहाँ दरख्त ज़्यादा होते हैं वहाँ सांस लेना इसलिए भी अच्छा लगता है कि वहाँ एग्जैक्टली 20% का रेशो रहता है। अल्लाह ने ये जो खामोश मशीनें आपको मुझे दिख रही हैं ना दरख्तों की सूरत में, ये हमारे ऑक्सीजन के निज़ाम को बैलेंस कर रही हैं, बिल्कुल इस तरह से ऑपरेट करती हैं। फिर आप देखिए कि लोग कहते हैं कि जी वक्त के सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं और दुनिया में आबादी ख़त्म हो जाएगी। मालथीस का नज़रिया आपको पीछे बताया था सूरत अल-अनाम की आयतों में, कि उसने कहा था कि आज से 50 साल बाद या कुछ साल बाद दुनिया में खाना ख़त्म हो जाएगा। हालांकि आप देखिए कि अल्लाह सुबहान तआला ने जो ये कहा कि हमने हर चीज़ को एक अंदाज़े से उतारा है, शुरू में दुनिया थोड़ी थी, फ्यूल थोड़ा चाहिए था। सबसे पहली चीज़ जो हम सब ने बचपन से सुनी, कोयला जलाने के काम आता है। आहिस्ता आहिस्ता कोयले के रिसोर्सेज ख़त्म हुए तो लोगों को थोड़ी फिक्र हुई कि आप जलाएंगे क्या, तो आप देखते हैं कि उसके बाद सुई गैस निकल आई, फिर गैस पेट्रोल, और आज के दौर में क्या चीज़ है, न्यूक्लियर फ्यूल। और फ़र्क कितना है, ये एक फिक्र नोट कीजिएगा, बड़ा हैरान कुन हद तक इंसान को दिखाता है 60,000 मेगावाट बिजली बनाने के लिए, यानी 60,000 मेगावाट बिजली अगर बनानी हो तो उसके लिए कल के दौर में 18 मिलियन टन कोयला चाहिए था। यानी इतना ज़्यादा कोयला हो, मेरा ख्याल है कि एक पूरा हीप हो, आधा शहर भर जाए अगर अपने इस तस्वुर में हम लाएं, फिर उससे ओनली 60,000 मेगावाट बिजली बनती थी। आज के दौर में इसका नेमुल बदल क्या है, यूरेनियम। सिर्फ 7 किलो यूरेनियम से इतनी ही बिजली आज न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पर यूज़ हो सकती है। यानी अल्लाह को पता है, आप कहते हैं हम खाएंगे कहाँ से, बच्चों की शादियाँ कैसे होंगी, ये कैसे होगा, वो क्या होगा, अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें पता ही नहीं है। फिर इसी तरह आप देखिए कि पानी के अंदर भी जो खूबसूरत निज़ाम है, बैक्टीरिया, हम सब उससे वाकिफ है, हमने बहुत यकीन रखा हुआ है कि आजकल वायरस फैला हुआ है, आजकल पोलन एलर्जी फैली हुई है, दिस एंड दैट। सिर्फ बैक्टीरिया को अगर आप देख लें कि अल्लाह ताला ने उसकी लाइफ के साइकिल को कैसे चलाया हुआ है, ये पानी वाले माहौल में रहता है। कहते हैं कि अगर इसको इसके हस्बे मवाफिक हालात मिले तो आज पूरी ज़मीन बैक्टीरिया से भर चुकी होती। आज इस वक्त दुनिया में कहाँ पानी है, कितना नहीं, कहीं खुश्की है, इसकी वजह से बैक्टीरिया दुनिया में सिर्फ उतने ही हैं जितने उससे इंसान फ़ायदा उठा सके। फिर इसी तरह दीमक, जिसका तस्करा पीछे हुआ था, दीमक की किस्म 2 मिलियन अंडे देती है और जिनमें से सिर्फ 500 अंडों में से दीमक निकलती है और बाकी अंडे कोई और मखलूक खा जाती है। कहते हैं कि अगर वो सारे के सारे अंडे दुनिया में मौजूद रहे और उनसे दीमक निकले तो पूरी दुनिया में दीमक की तहें लगी हुई हों। आप देखिए मुर्गी और मछली तो हमारे आंखों के सामने देखी हुई चीज़ें हैं ना, मुर्गियाँ जितने अंडे देती हैं, आप सोचते हैं कि अगर हर अंडे में से चूज़ा निकले तो कहते हैं इस दुनिया में मुर्गियों की फौजों की फौजें हों। कितने अंडे हम खाते हैं रोज़, कितने अंडों की ब्रेड्स बनती हैं, कितने अंडों के केक बनते हैं। अगर हम ये अंडे ना खाएं और हर अंडे से एक चूज़ा सिर्फ निकले तो पूरी दुनिया में सिर्फ मुर्गियां फैल जाएं। यही हाल मछलियों के, शहद की मक्खी अपनी ज़िंदगी में 50,000 उड़ाने चलती हैं। इंशाल्लाह सूरह नहल पढ़ेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं और अल्लाह की कायनात क्या कर रही है। 50,000 उड़ानों के बाद सिर्फ 1 टीस्पून शहद बना के दुनिया से जाती है और वो एक स्पून जो है हम खाते हैं। इतनी मेहनतों का नतीजा इंसानियत को शहद की सूरत में मिलता है। किसने ये निज़ाम कायम किया, 50,000 फूलों का रस चूसती है फिर एक चम्मच शहद बनता है, जो में से अक्सर की आधी चम्मच तो सिंक में जाके गिर जाती है। इतना हमारे पास है, अल्लाह हमें हिदायत दे। फिर जो शार्क मछली के पीछे बात हुई तो उसकी भी थोड़ी डिटेल समझ लीजिए कि शार्क मछली जो है ना, उसके मुंह में दांतों की सिर्फ एक रो नहीं होती जैसे अमूमन हमारे होती है, इसके पूरे मुंह में इस तरह रोज़ होती हैं। अब जब ये खाती है गोश्त तो इसके दांतों की जो रोज़ है उसके अंदर छोटी छोटी गोश्त की बोटियाँ फंस जाती हैं। अल्लाह ताला ने इसका इंतज़ाम किया है कि रिमोरा फिश कहते हैं उसको, रिमोरा फिश नाम की एक मछली रहती ही इसके मुँह में और वो बैठ के वो दांतों में फंसा हुआ गोश्त खाती रहती है। अल्लाह कहते हैं तुम रिस्क दोगे, तुम हो इनके राजिक, हम इनको रिस्क देते हैं। आप देखिए हम खाना खाते हैं फिर मैदे में जाता है, पहले च्यू किया फिर मैदे में गया फिर छोटी इंटेस्टाइन में बड़ी में, 7-8-10 घंटे के बाद फिर कहीं जाके वो ब्लड में गया। कितनी मेहनत की, मच्छर 1 सेकेंड में आपके हाथ पर बैठता है वो पी के चला जाता है। अल्लाह उसको रिस्क देता है, अल्लाह ने उसका रिस्क रखा है आपके खून में, आप कैसे रोकेंगे। मक्खी आपके खाने का बेहतरीन हिस्सा लेके चली जाती है। तो जिस तरह वो रब हमारा रब है ना, इसी तरह वो रब दूसरी चीज़ों का भी रब है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस कायनात में बड़ा खूबसूरत निज़ाम रखा हुआ है। कहते हैं कि एक इंसेक्ट था जो बहुत ही उनको लग रहा था कि फसलों को नुकसान देता है, कीड़ा, फसलों का कीड़ा कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने उसके ऊपर ऐसे वो डाले जिसको आप कह सकते हैं क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ डाल के उसको ख़त्म कर दिया। जो ही उसको ख़त्म किया तो जो चीज़ मुशाहदे में आई वो क्या था कि मोनार्क बटरफ्लाई वो भी ख़त्म हो गई है। ये बटरफ्लाईज की एक बहुत अहम किस्म है जो बहुत कारामद है इस कायनात में। पता क्या चला कि वो इंसेक्ट जो इंसानों ने दवा डाल के ख़त्म किया वो इस मोनार्क बटरफ्लाई की खुराक थी, तो वो ख़त्म हो गया, तो ये हो गया। और वो बात तो आपने पहले भी शायद मेरे मुँह से सुनी होगी कि मलेरिया जिस जरासीम से फैलता है, मच्छर से फैलता है। तो कनाडा में इन्होंने उस मच्छर को ख़त्म करने की कोशिश की कि मलेरिया से बचे, मलेरिया से बच गए, लेकिन एक और इतनी ज़बरदस्त किस्म की बीमारी पैदा हो गई कि उनको फिर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करना पड़ा उस मच्छर को। पता क्या चला कि इस मच्छर से बैक्टीरिया तो पैदा होता है लेकिन फलां दूसरी बीमारी के जरासीम्स को ये खाता है। हुमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तुमने तो अल्लाह की वो कदर ही नहीं की जो उसकी कदर का हक है। हकीकत है कि जितना इंसान फितरत के अंदर दखल अंदाजियाँ कर रहा है उतना इस दुनिया का निज़ाम जो बिगड़ रहा है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो हम देखेंगे बहुत कुछ बंदगी के नाम पर कि हम हैं क्या, हमारी औकात क्या है और हम बंदे क्या हैं। हमने तो अपने आप को अपनी नज़रों से देखा है, अब अल्लाह हमें हकीकत की नज़रों से दिखाते हैं। आइए अब आदम और इबलीस की कहानी एक नए अंदाज़ में पढ़ते हैं।